हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 351। डॉक्टर ने आगे बताना जारी रखा, क्योंकि ऊपरी चोट भी इतनी ज्यादा थी कि हमने सिर्फ चोट का ट्रीटमेंट किया, कोई भी चेकअप या कोई भी जांच नहीं की, तो इसीलिए मैंने बुलाया था। और अभी उनका इस तरह से बेहोश होना, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो अजीब सी बहकी बातें कर रही थीं, जैसे कि पिछले कुछ दिनों की बातें भूल गई हों। तो अब हम एक हफ्ते तक नहीं रुक सकते, हमें आज ही चेकअप करना होगा। इस पर आदित्य ने कहा, हाँ वो भूल गई थीं, कुछ दिन नहीं बल्कि महीने, लगभग 8 या 9 महीने पहले जब हमारी शादी हुई थी और शुरुआत का एक महीना ही बीता था, उस वक्त हमारा रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। मतलब हम इतना नहीं जानते समझते थे एक दूसरे को, और तब वो हमेशा ही मुझ पर चिल्लाती थी और मुझसे सवाल करती थी, और मेरी तब ड्रिंक करने की आदत थी, तो इसीलिए भी वो मुझसे चिढ़ी रहती थी और बार बार ड्रिंक करने को लेकर ताने मारती रहती थी। तो बस ऐसा ही कुछ उसने आज सुबह किया, और पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी शादी हुई है। ऐसा क्यों है डॉक्टर? क्या सच में उसकी याददाश्त में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये सब टेम्प्ररी है? डॉक्टर को पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए आदित्य ने काफ़ी टेंशन लेते हुए पूछा, तो डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स मिस्टर सिंघानिया, मैंने कहा ना, आप थोड़ा सा सब्र रखें और हिम्मत भी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी कुछ देर के बाद हम एक बार फिर से ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फिर हम उन्हें तुरंत ही चेकअप के लिए ले जाएंगे, और फिर कुछ देर बाद हमें चेकअप के रिजल्ट पता चल जाएंगे, तब मैं आपको पूरी बात डिटेल में बता पाऊंगा, लेकिन तब तक वो बस रेस्ट कर रही हैं, अब देखते हैं उन्हें कब होश आता है। डॉक्टर इतना कहकर आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए वहां से चले गए। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद आदित्य ने एक गहरी सांस ली और फिर अनय की तरफ देखा, तो अनय ने कहा, ठीक हो जाएगी भाभी, डॉक्टर ने कहा ना, और वैसे भी ये सब टेम्प्ररी ही है, तो इतनी टेंशन मत ले यार। अनय की बात सुनकर आदित्य ने भी हल्के से अपना सिर हिलाया और फिर वो चलते हुए बेंच पर आकर बैठ गया। अनय भी उसके साथ ही आकर बैठ गया, और तभी आदित्य का मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ। उसका किसी से भी बात करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर उसने मोबाइल फ़ोन निकाला तो देखा कि अरविंद का कॉल था, और अरविंद उसे जल्दी कॉल नहीं करता है, सारी बातें मेल या मैसेजेस पर ही होती हैं, लेकिन अगर वो कॉल कर रहा है तो ज़रूर कोई अर्जेंट बात ही होगी, ये आदित्य को पता था, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अरविंद के कॉल रिसीव कर लेता है। अनय वहाँ उसके साथ ही बैठा हुआ था, उसकी तरफ देखते हुए आदित्य ने वो कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से अरविंद जो कुछ भी बोल रहा था उसे सुनकर आदित्य की भौंएं सिकुड़कर आपस में मिल गईं, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी एकदम से चेंज हो गए, और वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया, और उसने बोला, हाँ कहाँ थे तुम लोग, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये सब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है तुम सब वहीं पर रुको, मैं आता हूँ। और इतना बोलते हुए उसने आखिर में कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसकी बातों से अनय इतना तो समझ गया कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन क्या, ये उसे समझ में नहीं आया। तो आदित्य के कॉल डिस्कनेक्ट करते ही उसने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ आदि, सब ठीक तो है ना? इस पर आदित्य ने कहा, अनय प्लीज़ क्या तुम यहाँ पर रुक सकते हो सुनैना के होश में आने तक, मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है, मैं सच में जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे जाना ज़रूरी है, आदित्य ने उससे थोड़ी रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो अनय ने कहा, हाँ ठीक है, मगर कहाँ जाना है, और मैं रुक सकता हूँ, लेकिन तुम ठीक तो होगे ना, मतलब सेफ, कोई ऐसा खतरा तो नहीं है ना आदित्य, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हो? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए आदित्य ने बहुत ही आराम से कहा, नहीं तुम डोंट वरी, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगा, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लेकिन तुम ठीक मेरे लौटने तक यहाँ पर ही रहना, और कुछ भी हो तो तुरंत मुझे कॉल कर देना, या फिर नदीम को कॉल कर देना अगर मेरा नंबर ना लगे तो। अनय इस बात पर बोला, मेरे पास नदीम का नंबर नहीं है। आदित्य ने कहा, रुको मैं तुम्हें भेजता हूँ, और इतना बोलकर आदित्य ने अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन से नदीम और अरविंद दोनों का नंबर अनय के नंबर पर भेज दिया। उन दोनों का नंबर रिसीव होते ही अनय ने कहा, ठीक है मैं कर दूंगा कॉल, और रुक भी जाऊंगा भाभी के होश में आने तक, लेकिन तुम बताओगे कि कहाँ जा रहे हो और क्या हुआ है? आदित्य ने थोड़ा आनाकानी करते हुए कहा, हाँ आकर बताता हूँ मैं, और मैंने कहा ना बस कोई ज़रूरी काम है। आदित्य ने बहुत ही शांत लगने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन ये सब बोलते हुए वो बहुत ही परेशान लग रहा था, इसीलिए अनय को तो उसकी बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो समझ गया कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम या कोई बड़ी बात है, और नहीं तो आदित्य सुनैना को यहाँ हॉस्पिटल में छोड़कर कहीं भी नहीं जाता, क्योंकि पिछली बार उसे याद है कि किस तरह वो पूरे 3 दिनों तक उसके होश में आने के इंतजार में यहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन आज एक फ़ोन कॉल आते ही वो इस तरह से लगभग भागते हुए यहाँ से जा रहा है। लेकिन अनय ने अब और कुछ नहीं बोला, क्योंकि इतनी बार पूछने के बाद भी आदित्य ने उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, तो वो समझ गया कि वो सीधी तरह उसे कुछ भी नहीं बताने वाला है। अनय से बात करके आदित्य उसी तरह हड़बड़ाहट में वहाँ से चला गया। अनय उस तरफ ही उसे जाते हुए देख रहा था, और वो कुछ ही देर में वहाँ गैलरी के एंड तक पहुंचकर राइट साइड में मुड़ा और उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। उसके जाने के बाद अनय अकेला ही वहाँ हॉस्पिटल बेंच पर बैठा रहा, क्योंकि उसके पास अब इंतजार करने के अलावा कोई भी और काम नहीं था। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उस पर उसने मनस्वी के नंबर की मिस कॉल देखी, और इसके बाद उसने मनस्वी को मैसेज भी किया था, लेकिन उसने उसे ठीक तरह से नहीं बताया था कि वो कहाँ पर है और किसके साथ है। तो अब उसने सोचा कि एक बार वो उसे कॉल करके इस बारे में बता देता है। ये सोचते हुए उसने मनस्वी का नंबर डायल किया, लेकिन पूरी बेल रिंग होने के बाद भी दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं हुई। तो अनय ने अपने आप से कहा, ओ मनस्वी, बदला ले रही हो क्या? वैसे मुझे बस ये बताना था कि मैं कहाँ पर हूँ। कोई बात नहीं, फिर से मैसेज कर देता हूँ। इतना बोलते हुए अनय ने कॉल डिस्कनेक्ट की और फिर मैसेज में उसे बता दिया कि वो हॉस्पिटल में है और सुनैना यहाँ पर एडमिट है, तो वो वहीं रुका हुआ है आदित्य के साथ। आदित्य वहां से चला गया है, ये बात उसने मनस्वी को मैसेज में बताना जरूरी नहीं समझा। और फिर इतना मैसेज करके उसने फोन वापस अपने पॉकेट में रख लिया और वहीं पर बैठा रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां पर आए और उन्होंने आदित्य के बारे में पूछा, तो अनय ने कहा कि वो तो बस अभी अभी कहीं चला गया है यहाँ से। डॉक्टर ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टर सिंघानिया यहाँ पर नहीं है तो भी हम बस आपको इतना इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम पेशेंट को चेकअप के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि सिटी स्कैन करने के लिए पेशेंट को बेहोशी करना पड़ता है और वो ऑलरेडी होश में नहीं है, तो ऐसे में उनका सिटी स्कैन अच्छे से हो जाएगा। अनय ने पूछा, इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी है या कुछ पेपर साइन करना होगा क्या? उसके लिए मैं साइन कर सकता हूँ क्या? अनय के पूछने पर डॉक्टर ने जवाब दिया, नो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो पहले ही उनके हस्बैंड साइन कर चुके हैं और सारी फॉर्मेलिटीज भी कम्प्लीट कर दी है।
डॉक्टर सुनैना को वहां से चेकअप के लिए लेकर चले गए और अनय फिर से वहीं पर ही बैठ गया, क्योंकि उसे उनके साथ चेकअप रूम में जाने की परमिशन नहीं है। और उसने दोबारा से अपना मोबाइल फोन निकालकर फिर मनस्वी का ही नंबर डायल किया। आदित्य के वहां से इस तरह चले जाने के बाद से अनय को पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसका मनस्वी से बात करने का भी मन हो रहा था। अनय ने फिर से उसे कॉल किया और इस बार मनस्वी ने कॉल रिसीव कर ली, तो अनय उससे बात करने लगा। दूसरी तरफ आदित्य अपनी कार से वहां उस सीक्रेट प्लेस पर पहुंचा और कार से निकलकर लगभग भागते हुए वो फिर वहां से उस बेसमेंट में पहुंचा, तो उसने देखा कि वो जगह एकदम खाली है और जिस कुर्सी पर उसने विराज को बांधकर रखा हुआ था वहां पर अब वो नहीं है। और साथ ही विराज की माँ भी, जो कल ही उसे छुड़ाने के लिए आई थी, उन लोगों ने उसे भी पकड़ लिया था, अब वो भी वहां पर नहीं है। फिलहाल वहां पर उसके सामने मुंह लटकाकर सिर्फ उसके सिक्योरिटी गार्ड्स एक लाइन में खड़े हुए हैं और उन सब में से अरविंद थोड़ा सा साइड में अलग होकर खड़ा है। और आदित्य के आते ही वो उसकी तरफ बढ़कर आया और बोला, बॉस, वी आर रियली सॉरी। आदित्य इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। एक तो सुनैना की हालत को लेकर वो वैसे ही परेशान था और उस पर विराज के ऐसी सिक्योर जगह से भाग जाने की बात सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसलिए उसने आओ देखा न ताओ अरविंद के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, ये तुम्हारा सॉरी सुनने के लिए नहीं आया हूं मैं यहां पर, जाओ और ढूंढो उसे, पता करो कहां पर है वो, यहां से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, अगर वो हाथ से निकल गया या पुलिस के पास पहुंच गया तो फिर समझ लेना तुम लोगों का मैं क्या करूंगा, क्या होगा तुम लोगों के साथ, उससे भी बुरी हालत होगी तुम लोगों की, इसलिए जाओ अब, खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो। जैसे ही आदित्य ने अरविंद के गाल पर चांटा मारा वो अपनी गिल्ट की वजह से नीचे देखने लगा, लेकिन फिर उसने धीमी आवाज में कहा, सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, शायद हमें उस औरत को किडनैप नहीं करना चाहिए था और उसी की वजह से वो दोनों ही यहां से निकलकर भाग पाए हैं। इस पर आदित्य ने कहा, यहाँ पर कोई भी ऐसे ही आ नहीं सकता और इसके अलावा जिसे भी हम यहाँ पर लेकर आते हैं उनमें से किसी को भी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं पता होता है, ऐसे में अगर वो लोग यहाँ से भागे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की गलती है। उसके इस बात पर अरविंद ने भी कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि एक तरह से आदित्य सही कह रहा था। वहां से निकलने और वहां तक आने की जगह और रास्ता बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बना हुआ है, इसलिए उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो दोनों माँ बेटे वहां से निकलकर भाग गए हैं, इसलिए आदित्य गुस्से में अपने दांत पीसता हुआ वहां पर इधर से उधर चल रहा है। क्रमशः